नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा भाग दो के अध्याय संख्या चार, चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन का पठन पाठन करते हुए हिंदी अनुवाद करेंगे। इसके उपरांत हम इसकी वर्कशीट पर अर्थात प्रश्न अभ्यास का भी पठन पाठन करेंगे और आपको लिखने के लिए निर्देश देंगे कि किस प्रकार से आपको ये लिखना है। अब मैं शुरू करता हूँ, सुनिए ध्यानपूर्वक, सभी बच्चे सुनो। एक मंच है, मंच के ऊपर चार बाल कवि विभिन्न वेशभूषा धारण करके अर्थात अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनकर उपस्थित हैं। नीचे मंच के नीचे श्रोतागण हैं। श्रोतागण बाल कवियों की रचनाएं सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। संचालक महोदय उन सभी को शांत रहने का निर्देश देते हैं कि चुप रहिए, चुप हो जाओ, अभी कवियों की अपनी अपनी रचना सुनिए। तो संचालक महोदय के ये निर्देश के बाद सभी श्रोतागण चुप हो जाते हैं और एक एक कवि अपने अपना नाम का उच्चारण करते हुए अपनी अपनी काव्य अपना अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करते हैं। तो पाठ इस प्रकार से है, विविध वेशभूषाधारिण है चत्वारह बाल कव्य है मंचस्य ऊपरी उपविष्टः सन्ति। विविध प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और भयंकर आवाज कर रहे हैं, यानी शोर शराबा कर रहे हैं। संचालक है, संचालक अलम कोलाहलेन आवाज मत करो, शोर मत करो। अध परम हर्ष से अवसर है यत अस्मिन कवि सम्मेलन है काव्य हंतार है काल्यश्चप है काल काल्य अप्लश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागताः सन्ति। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। यही इनकी आइए करतल धवनीना, यही मीन आइए करतल धवनीना, तालियों की आवाज़ से, तालियों की गड़गड़ाहट से वयम एतेषां स्वागतम कुर्मे है, हम इनका स्वागत करते हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। अब ये इसके बाद एक कवि जो पहला बाल कवि है खड़ा होता है और जिसका नाम है गजाधर। सर्वेभ्यो रसिकभ्यो नमः नमः, सभी नीरस जनों को रस अरसिक, अरसिक मीन जो कविता आदि सुनने में रुचि नहीं रखते, जिन्हें कविता आदि का ज्ञान नहीं है, उनको कह रहे हैं कि सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वेदम, सबसे पहले मैं आधुनिक वेद पर को उद्देश्य करके मैं अपनी स्वयं की लिखी हुई कविता सुनाने जा रहा हूँ। अब वो अपनी कविता सुनाते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरन्ति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। तो उन्होंने वैद्य के ऊपर अपनी कविता, स्वयं रचित कविता प्रस्तुत करते हुए कहा, वैद्यराज हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। यमराज जो मृत्यु के देवता बताते हैं कि मृत्यु जो व्यक्ति के उत्तर लेने के लिए आते हैं, सहोदर मीन भाई, नमे मीन नमस्कार, तुभ्य मीन तुम्हें, हे यमराज के भाई तुम्हें मेरा नमस्कार। यमस्तु हरंती प्राण, हरंती मीन यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, अर्थात प्राणों को ही ले जाता है, परंतु वैद्य है प्राणान धनानी चे, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों का हरण करता है। इसलिए इस काव्य में क्या बताया है कि उसने वैद्य के ऊपर व्यंग किया है कि वैद्य जो होते हैं उसे यमराज का छोटा भाई बताया है। उसे नमस्कार करते हुए वो कह रहे हैं कि यमराज तो केवल व्यक्ति के प्राणों को हरण करता है, लेकिन वैद्य जो है वो व्यक्ति के प्राण भी नहीं बचा पाता और उसके धन को भी ले लेता है, अर्थात उसे मर कंगाल भी कर देता है और उसके प्राण भी नहीं बच पाते। तो गजाधर ने अपनी ये कविता वैद्य को उद्दिष्ट करके सुनाई। उस ये कविता सुनने के बाद सर्वे उच्चई हसंती, सभी जोर जोर से हंसते हैं। कौन हंसते हैं? श्रोतागण। उन श्रोतागणों ने जब ये कविता सुनी तो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद दूसरे कवि हैं कालांतक, उनका दूसरे बाल कवि का नाम है कालांतक। अरे वेदस्तु सर्वत्र, अरे वेद तो सभी जगह होते हैं, परम ने ते माँ दर्शा कुशले जनसंख्या निवारणे, परंतु वे सब माँ दर्शा मेरे जैसे कुशला कुशल दक्ष जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या नियंत्रण करने में। अरे वैद तो सभी जगह हैं, परंतु वे सब मुझ जैसे जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं है, अर्थात जनसंख्या को रोकने में इतने दक्ष नहीं है। मम अपि मेरी भी काव्यम काव्ये कविता इदम श्रुणंतु भव, आप सब मेरी भी यह कविता सुनिए। ये किसने कहा? कालांतक ने कहा कि इस दुनिया में सभी जगह वैद्य हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में कोई मेरे जैसा इतना चतुर कुशल नहीं है, इस आप सब लोग मेरी भी यह कविता सुनिए। अब वो अपनी कविता सुनाता है, क्या कह रहा है? चिताम प्रज्वलता दृष्ट्वा वेदो विस्मयगत विस्मय आगतः, न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्त लाघवम। चिताम प्रज्वलता, चिता होती है जहाँ डेड बॉडी को, मृत व्यक्ति की शमशान भूमि में जब जलाते हैं उसे कहा है चिता। प्रज्वलिता जलती हुई, दृष्टवा देखकर, वेदो वैद विस्मय आगत है, आश्चर्यचकित हो गया। वैद जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, न अहम गतो, न तो इस व्यक्ति के पास मैं गया और न ही मेरा कोई वैद्य भाई इसके पास गया, फिर ये किसकी हाथ की सफाई है कि जिस किसकी वजह से इसकी मौत हुई है, ये सब उसने अपनी इस कविता में बताया। यानी जल वैद्य जलती हुई चिता को देख करके आश्चर्यचकित हो गया, सोचने लगा कि न तो मैं गया हूँ और न मेरा कोई भाई वहाँ पर गया, लेकिन फिर ये किसकी हाथ की सफाई है, उसने अपनी कविता में इस बात को बताया। सर्वे पुनः हसंती, सभी श्रोतागण फिर से हंसने लगते हैं। तो ये पहला एक मॉड्यूल है, मैंने इसको इसी भाग में यहीं तक इसका हिंदी अनुवाद किया है। उसके बाद हम इसके जो प्रश्न अभ्यास है उसके तीन जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें दूसरा पहला क्वेश्चन दिया है उच्चारणम कुरुत, इसको उच्चारण ही करना है, ऊपरी अध उच्चई निचई बही है अलम कदापि अंतह पुनः कुत्र कदा एकदा। तो इसी प्रकार से इनका उच्चारण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरियत, पेटी से अव्यय पद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो 5 इन्होंने अव्यय पद दिए हैं पेटी के अंदर, अलम अंतह बही है अधह है ऊपरी, अलम मीन मत, अंत मीन अंत में, बही मीन बाहर, अधह मीन नीचे, ऊपरी मीन ऊपर। पहला है वृक्षस्य डैश खगा वसंती, वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। 2, डैश विवादेन, विवादेन होता है झगड़ा, अलम विवादेन झगड़ा मत करो, अलम विवादेन। वर्षा काले ग्रहात डैश मा गच्छ, वर्षा काले वर्षा ऋतु में, ग्रहात जब वर्षा हो रही है उस समय, ग्रहात मीन घर से, बही मीन बाहर, मा गच्छत मत जाओ, वर्षा हो रही हो तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, बही है, बही मीन होता है बाहर। मंचस्य अगला है, मंचस्य मंच के, अध अध मीन नीचे, श्रोतारह है श्रोतागण, उपविष्टा बैठे संति हैं, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। तो चौथे में क्या आएगा, अध है। अभी इसका जो 5वां है, छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति, छात्र छात्राः विद्यालयस्य अंतः प्रविशन्ति, अंत में प्रवेश करते हैं, विद्यालय के अंत में प्रवेश करती हैं, कौन, छात्राः छात्र। ये तो था अव्यय पद चुन करके खाली स्थान भरना। उसके बाद अशुद्ध पद चिनुत, अशुद्ध पद को हमने चुनना है। इसमें पहले में क्या दिया है, गमंती यच्छंती प्रच्छंती धावंती। तो यहाँ गमंती, गम का गच्छ बनता है, यदि यहाँ गच्छंती होता तो सही होता, परंतु यच्छंती प्रच्छंती धावंती ये करेक्ट है, यहाँ गमंती या गमंती कोई शब्द नहीं होता संस्कृत में, इसलिए अशुद्ध है गमंती। दूसरे में रामेण ग्रहेण सर्पेण और गजेण, तो इन चारों में गजेण जो है वो अशुद्ध है। लतिया मातिया रम्य निशिया, तो मातिया जो है इनमें अशुद्ध पद है, इसको हम लिख देंगे। लते रमे माते प्रिय, इन चारों पदों में माते शब्द जो है वो अशुद्ध है और उसको हमने लिख दिया। लिखती गरजती फलती और सेवती, इनमें लिखती गरजती फलती सेवती में सेवती शब्द जो है वो अशुद्ध है, इसलिए इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो पहले में गमंती, दूसरे में गजेन, तीसरे में मातिया, चौथे में माते, पांचवे में सेवती। अब चौथा जो क्वेश्चन दिया है, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, पेटी से समान अर्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द चुनकर उनको जिनके अर्थ समान हैं उनके सामने लिखिए। इसमें पेटी में दिया है प्रसन्नतायाः चिकित्सकम् लब्ध्वा शरीरस्य दक्षा। प्रसन्नताया का अर्थ होता है खुशी, चिकित्सकम् होता है डॉक्टर या वैद्य, लब्ध्वा मीन लब्ध्वा प्राप्त करना, शरीरस्य शरीर का, दक्षा चतुर कुशल। अब पहला जो दिया है प्राप्य, प्राप्य का समानार्थिक शब्द बना ऊपर से उठा के लब्ध्वा, लब्ध्वा दोनों के, लब्ध्वा और प्राप्य दोनों के अर्थ समान है, प्राप्त करना। कुशला, कुशलहा, कुशला मीन चतुर दक्ष, तो इसमें दक्षा यानी कार्य कुशल यानी काम करने में प्रवीण या चतुर। हर्षस्य, हर्ष का, खुशी का, तो प्रसन्नताया, प्रसन्नताया मीन प्रसन्नता का, हर्षस्य खुशी का। देहस्य, देहस्य मीन शरीर का, देहस्य मीन शरीर का। अब इसमें देखिए शरीरस्य, तो इसका समानार्थिक शब्द ऊपर से लेके उठा लिख देंगे शरीरस्य। और इसका जो पांचवा है वेदम, वेदम मीन चिकित्सकम, वेद मीन डॉक्टर, चिकित्सक मीन इलाज करने वाला। तो इस प्रकार से प्राप्य, लब्ध्वा, कुशलः, दक्षः, हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, देहस्य, शरीरस्य, वेदम, चिकित्सकम्। तो ये इस मॉड्यूल एक का चतुर्थ पाठ का पहला जो मॉड्यूल जो हमने तैयार किया है, इसमें एक वर्कशीट है, इसका हैंडआउट है और ये प्रेजेंटेशन है। तो आधे चैप्टर को हमने बताया, उसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो क्वेश्चन जो थे इसको मैंने आपको बताया। और आप इसको अपनी नोटबुक में उतार करके उतार ले और अपनी नोटबुक बना करके, ताकि अब आगे चल करके हमें उसको याद करने में आसानी हो सके। तो धन्यवाद आपका। यदि कुछ डाउट हो तो पूछिए। और धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।